وينقلب الى اهله مسرورا، اور واپس لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف مسرور، شاداں فرحا، خوشی خوشی آئے گا، یہ دیکھو میں فرسٹ آیا. کسی ایسے بچے کو سوچ لے جس کو اے گریڈ ملے یا فرسٹ پوزیشن ملے، تو اس دن جب گھر آئے گا تو کیا حال ہوگا؟ بس حساب ہے یہ سیرہ کیا ہے کہ حساب نہ لیا جائے، یہ لکھ لیں. جس سے حساب لیا گیا بس کیا، فلاں کام تو نے کیا، کیوں کیا، عذر کیا ہے، وجہ بتاؤ. اس کی بھلائیوں کے ساتھ اس کی برائیاں بھی اس کے نام اعمال میں موجود ہوں گی، مگر بس یہ دیکھ کر کہ بھلائیوں کا بلڑا بھاری ہے، اس کے قصوروں سے درگزر کیا جائے گا، اس کو معاف کر دیا جائے گا. پھر وہ خوشی خوشی گھر آ کے کہے گا، آج تو سستے چھوٹے، شکر ہے چھوٹ کے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد کی آیت 18 میں حساب یسیرہ کے بالمقابل سوء الحساب کا لفظ استعمال کیا ہے. نیک لوگوں کے لیے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بہتر اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، سورۃ الانکاف آیت 16 میں. اور سورۃ الرعد میں بتا دیا کہ جن کا برا حساب ہے ان سے خوب پوچھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا. آپ سوچئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایکشن پہ ہوتی تھی. نہ صرف یہ کہ نماز، بلکہ نماز کے اندر پڑھی جانے والی دعائیں، مانگی ہوئی دعائیں جو ہیں، اس کو بھی وہ نوٹ کرتی تھی. اور وہ دعا کیا تھی کہ اللہ میرا آسان حساب لینا. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. کہتی ہیں کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو میں نے مطلب پوچھا کہ اللہ کے نبی حسابا یسیرا کیا ہے، تو فرمایا کہ عائشہ، حسابا یسیرا یہ ہے کہ بندے کے نام اعمال کو دیکھا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے، اور جس سے حساب فہمی کی گئی وہ برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دنیا میں ہی اپنا حساب لینے والے بن جائیں، اور اس کیفیت کو تھوڑا سا امیجن تو کریں. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف، مراد رشتہ دار، ساتھی، دوست، احباب، خوشی خوشی آئے گا. دنیا میں آپ نے انسانوں کی ایک کمزوری دیکھی ہوگی، اور وہ کیا کہ غم کا وقت اکیلے میں رو دھو کے گزار لیں گے. کمبل لیا، لیٹ لیا، تھوڑا روئے، تھوڑا نماز پڑھ لی، کسی نے اللہ کو یاد کیا، کر کرا کے معاملہ درست. جو ہی کو خوشی ملتی ہے تو کیا دل جاتا ہے؟ پہلی بات ہے خوشی سے نیند ہی نہیں آتی، پھر فوراً نظریں جاتی ہیں فون پہ، اللہ ذرا میں بتانا تو بھیجیے. آپ کوئی سوچیں نا، کسی کے بیٹا پیدا ہوا، کوئی خوش بیٹا تو چھوڑ دیں، صرف اگر شادی کے 2-4 سال کے بعد امید ہی لگ جائے تو اس وقت سارے شہر کو خبر ہوتی ہے. ایک ایسی ہی خاتون تھی، تو بیٹے کی شادی کو 6-7 مہینے سال ہو گیا ہوگا، ابھی امید نہیں تھی. پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بہو پریگننٹ ہے، ہر ایک کو بتا رہی ہیں، دھوبی کو بتا رہی ہیں، اب کچھ عرصے کے بعد ہمارے کپڑے اور بڑھ جائیں گے، جو آ رہا ہے اس کو بتا رہی ہیں، آپ کو پتہ یہ ہو رہا ہے. تو بچے بھی، گھر والے بھی، لوگ یعنی مذاق، وہ کہتے ہیں میرے سے چھپ ہی نہیں رہا، میرا دل کرتا ہے میں ہر ایک کو بتاؤں کہ اب ہمارے گھر ایک نیا مہمان آنے والا ہے. تو انسان نہیں برداشت کر سکتا. حقیقت ہے ہمارے دل میں غموں کے لیے زیادہ جگہ ہوتی ہے، خوشیوں کے لیے کم ہے. آپ کتنے ہی صابر ہوں، کتنے آپ تحمل والے ہوں، خوشی میں مسکراہٹ نکل جاتی ہے، غم میں آپ اپنے آنسو بند کر لیتے ہیں، آنکھیں نہیں چھلکتی، لیکن خوشی میں آپ کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں. کیا وہ وقت ہوگا؟ آپ اپنے سارے خاندانوں کو سوچیں، رشتہ داروں کو، ساتھیوں کو، اور جا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کیا حال ہوگا. آپ سوچ کے دیکھیں گے نا، آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے وہ دن اپنا یاد آ جائے گا، خوشی خوشی آ رہے. لیکن ایک برا کردار بھی ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس میں ہو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس بد نصیب کو اس کا نام اعمال پس پشت دیا گیا، اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا. پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیا گیا؟ کیونکہ جب اس کو بائیں ہاتھ سے دینے کی آفر ہوگی نا، تو ہاتھ پیچھے کر لے گا. سورۃ الحاقہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کو اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، یہاں پیچھے دیا گیا کی بات ہے. کیوں؟ کہ پہلے مایوس ہوگا کہ دائیں ہاتھ میں تو ملنا نہیں، بائیں ہاتھ سے لینا نہیں چاہے گا، تو ڈرتے ہوئے جیسے کوئی چیز آپ نہ لینا چاہتے تو ہاتھ پیچھے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 میں نہیں لیتا. تو کہتے ہیں کہ جب وہ پیچھے جائے گا اس کا نام مال اڑتا ہوا اس کے پیچھے ہاتھ کے اندر تھما دیا جائے گا. और जहर के पीछे डालना, यहाँ लफ्ज़ बड़ा काबिल गौर है कि उसने दीन को पसे पुश डाला हुआ था, उसने अल्लाह की किताब को भी तो पसे पुश डाला हुआ था ना। वैसे तो किताब को पीछा नहीं करता था, जहाँ किताब पढ़ी होती थी वहाँ उल्टे कदम चलता था, लेकिन सारी ज़िंदगी किताब को उल्टे ही डाला रखा। कोई शादी आ गई, किताब पीछे पड़ गई, गम आ गया, किताब पीछे पड़ गई, मेहमान आ गया, किताब पीछे पड़ गई, कोई बीमारी, सेहत, आफियत, परेशानी कोई भी हो गई, किताब पीछे रख दी, कहा वहाँ भी उसको नामे अमल पीछे दिया जाएगा। फसौफ यदउ सुबूरा, तो वो चिल्लाएगा, हाय अफसोस, हाय हलाकत, हाय मौत। सबूरा का लफ्ज़ आया इस्तेमाल हुआ, हलाकत और खसारे को कहते हैं, तबाही, बर्बादी। हमारे यहाँ कहते हैं ना, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, यही जुमला अरबी में वो कहते हैं सबूरा। ऐसा शख्स जो है वहाँ हलाकत की बातें करता हुआ दिखेगा, लेकिन कोई फ़ायदा ना होगा, उसका वावीला मचाना, उसकी चीखो पुकार, उसकी शौत, ये नहीं। सबूरा को कहकर क्या कह रहा है कि हाय ये मौत, मुझे वापस आ जा, तो फिर आ जा ताकि मैं इस अजाब से बच जाऊँ। दुनिया में भी जब कोई बहुत दुखी होता है, कोई बीमार होता है, परेशान होता है, तो वो फिर दुआएं करता है कि मुझे मौत ही आ जाए, इसलिए वो पुकारेगा, काश मैं मर के मिट्टी हो जाऊँ और इस अजाब से बच जाऊँ। और फिर वहाँ जो उसकी आंखों के सामने रील चलेगी, अल्लाह ताला कहते हैं वयसला सईरा, दाखिल होगा भड़कती हुई आग में। वजह क्या है? इन्नहु कान फी अहलिही मसरूरा, बेशक वो दुनिया में अपने अहलोयाल में खुश व खुर्रम रहा करता था। क्या नहीं रहना चाहिए खुश अपने घर वालों में? क्या मतलब है इसका? बेखौफ होके जीना, इससे ये नहीं मुराद कि वो बहुत खुश मिजाज था इसलिए पकड़ा गया, बीवी के शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ अच्छे बातें करते थे, खुश थे। मुराद क्या है कि वो अल्लाह के खौफ से बेखौफ होकर अपने घर वालों में जीता था। सूरह तौहा की आयत नंबर 26-26 में हम पढ़ चुके कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं वो अपने घर वालों में अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी बसर करते, उनको हर वक्त ये फिक्र होता है कि हम अपने बीवी बच्चों की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उनकी दुनिया बनाते बनाते अपनी आकबत न बर्बाद कर ले। इसके बरक्स इस शख्स का हाल क्या है कि ये बंदा दुनिया में अपने बीवी बच्चों को नाराज़ कर देता था, लेकिन अल्लाह को नाराज़ नहीं करता था। बीवी बच्चों की खुशी के लिए हराम माल अपने घर में नहीं लाता था, उनके लिए ऐसी चीज़ें नहीं फराहम करता था कि जिसकी वजह से वो दुनिया में तो उससे बड़े खुश हों, लेकिन कल कयामत के दिन उसकी शक्लें ना दिखाएं। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा इंसान खुलता है तो अपने घर वालों के आगे खुलता है। नशा जो चढ़ता है ना बंदे को, वो अपने रिश्तेदारों में बैठ के चढ़ता है। ऐसे उसको लगता है कि जैसे बहुत महफूज हाथों में आ गया हूँ। और बड़े खुशकिस्मत वो लोग हैं जो ऐसी मोहब्बतों के वक्त में खुदा से डरते हैं। अब देखिए, हम सारी ज़िंदगी नेकियां करते रहते हैं, सिर्फ एक ख़ानदान की शादी आ जाए, हमारे लिए वहाँ नो कहना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ इस खौफ से कि अब क्या करें रिश्तेदारी का मामला। और सारी हदीसें सिला रहमी की हमें उस वक्त याद आती हैं, और सारी हक तलफियों की सज़ाएँ हमें उस वक्त याद आती हैं, और अल्लाह को नाराज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, गुनाह करते हैं सवाब का नाम लेकर कि नहीं नहीं अब रिश्तेदारियाँ तो रखनी है ना। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा शख्स अपने ख़ानदान वालों में खुश था क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करता, अल्लाह नाराज़ होता है तो हो जाए। हम सब अपने आइनों में झांक सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम का मामला, आपकी बीवियाँ फरमाती हैं कि आप हमारे साथ बैठे होते, खूब बातचीत होती, हंसी मजाक होता, कभी कभी एक दूसरे के ऊपर छीना झपटी आपकी बीवियाँ करती, आप उसको इंजॉय भी करते, इतने में अजान की आवाज़ आती तो आप हमारे पास से यूं उठ के चले जाते जैसे कि आप हमें जानते भी नहीं। और हम कहते हैं कि लो क्या हुआ, अगर आपकी जमात चाहती है तो जाएं, मुझे तो शॉपिंग कराएं ना। ये अगर किसी औरत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है ना कि उसको ऐसा शौहर मिल जाए कि जो दीन की केयर नहीं करता, तो मर्द के लिए भी ये छोटा इम्तिहान नहीं होता कि नेक मर्द को ऐसी बिगड़ी हुई औरत मिल जाए कि जो कहे कि सुबह शाम तुम मेरे साथ गुलछड़े उड़ाओ ताकि मैं अपने आप को मुतमईन करूं। और कितने ही लोग हैं जो मजबूर हो जाते हैं ऐसे वक्तों में। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, एक मर्द जो बाहर वालों के सामने बड़ा जीरक होता है, बड़ा इंटेलिजेंट होता है, वो अपनी बीवी के आगे आके बेवकूफ़ बन जाता है बाज़ औक़ात। क्यों? एक एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नुम में ले जाएगी, क्योंकि औरत के अंदर बहुत ताकत है ये कमज़ोर ताकत बहुत है इसमें। इसका तो आंसू देख के मर्द अपनी नीयत बदल लेते हैं, अब देखिए, माँ की आंखों का आंसू हो या बहन का आंसू हो या बीवी की आंख का हो, जो मर्द होते हैं ना, बड़े बड़े लोगों का जिगर जो है वो पानी पानी हो जाता है औरत की आंख में आंसू देखकर। ऐसे वक्तों में अगर कोई बंदा अपने घर वालों को खुश करता रहे, उनके लिए सामान्य ऐश जमा करता रहे इस बात पे कि ठीक है जो होगा तो फिर आप सोचिए कल क़यामत के दिन क्या होगा। इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा। किसी सिस्टर की बात याद आ गई कि घर का लेने का कोई मामला था, तो कहती मेरे शौहर यानी बीवी और बच्चों को कहती है कि मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए ये घर इस तरह ले रहा हूँ, वरना मुझे तो कोई शौक नहीं है लेने का। बीवी को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए जो चाहा कर लिया, ये था पहला जुर्म। दूसरा जुर्म, इन्नहु ज़न्न अन यहूर। वो ख्याल करता था कि अल्लाह के हजूर लौट कर नहीं जाएगा, यही फिक्र थी ना, बीवी के सामने जाने का खौफ था, उसकी बात उसकी नाराज़गी का डर था, लेकिन अल्लाह के सामने जाने का खौफ नहीं था। यहाँ जो लफ्ज़ है ना हौर, इसको देख लेते हैं, इसका मन ही होता है लौटना, पलटना, जैसे हम कहीं जाके वापस आते हैं ना, वही लफ्ज़ इधर भी आता है। नबी सल्लम की एक दुआ है, आप दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हौरी बादल कौर। बस दो लफ्ज़ याद कर रहे हैं, हौर और कौर, और आऊज़ु बिका लफ्ज़ इंशाल्लाह आपको भी आता होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिनल हौरी बादल कौर, ईमान के बाद कुफर या मासियत की तरफ पलटने से। आप सब इस दुआ का विर्द करें, वजीफे के तौर पर नहीं, याद करें। चंद दिन रह गए, ये कुरान की जंजीरियां और ये चेन्स जो है ना, ये हमें इस तरह नहीं जकड़ेंगी। कुछ दिन की छुट्टियां आएंगी ना बीच में, आप देखेंगे कि उसी में दिल बदलने लगता है, छुट्टियों के बाद आना मुश्किल लगेगा। ये दुआ कसरत से आपने अपनी चंद छुट्टियों के बीच में पढ़नी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हौरी बादल कौर, इसलिए कि हिदायत के बाद गुमराही ज़्यादा नुकसान देती है, इसलिए कि हिदायत के बाद गुमराही इंसान को तोड़ के रख देती है। किसी चीज़ का अपने जायका नहीं चखा ना, आप रह लेंगे उसके बगैर, जायका चख के आप उस चीज़ से अलग होते हैं, फिर सब्र करना मुश्किल होता है। टेस्ट अच्छा होता है ना तो इंसान का हाथ बार बार उठता है, पहली चीज़ खाई मिसाल है स्ट्रॉबेरी ली, वो खट्टी थी, अब दूसरी नहीं लेंगे, लेकिन मीठी स्ट्रॉबेरी के बाद आगे पड़ी और डिश में और आपके हाथ में ना हो के उठा ले, तो आपका ध्यान उसी में लगा रहेगा। अल्लाह ताला हिदायत का मज़ा चखा कर इंसान को कहता है कि देखो तुम इस तरह के काम ना करना कि इसके बाद तुम पीछे हो जाओ, पलट जाओ। अल्लाह ताला के नबी जब ये दुआ करते थे तो तुम्हें कितने दुआएं करने की ज़रूरत है, इसलिए फरमाया इन्नहु ज़न्ना लयफूर, नहीं पलट के जाना, कहा नहीं तुम्हारे समझने से कुछ नहीं होता, बला इन्ना रब्बहु कान बिही बसीरा, क्यों नहीं इसका रब इसे खूब देख रहा था। कब देख रहा था, जब ये फी अहलिही मसरूरा था। नमाजें छुटती हैं क्यों, वो शादियों के दिन है, जमात छुट रही है क्यों, वो दावतों के दिन है। ये आपको क्या हो गया, आपकी कमाई का ये मसला क्या है, वो बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों के दिन है। हर एक इस आईने में खुद को देख सकता है। अल्लाह ताला चंद कस्में खा के हमें यकीन दिलाते हैं कि लोगों ये क्या बता के रहेगी। आप इन सूरतों में अंदाज देख रहे हैं, पहली शुरू की आयतों में कसम आने के बजाय सूरत के आखिरी हिस्से की तरफ आने लगती है। फला उक्सिमु बिश्शफक, पस मैं कसम खाता हूँ शफक की। शफक क्या, मगरिब के बाद जो वक्त होता है ईशा से पहले पहले का, सुर्खी छा जाए सूरज की, वो सुर्खी जो सूरज के ग़ुरूब होने के बाद आती है। यहाँ तो आप देखते हैं कि फ़र्क ही है ना बहुत ज़्यादा, बादल का पूरी रात आसमान जब वो सुर्ख होता है, लेकिन यहाँ मुराद बहरहाल वही है कि जो सूरज के डूबने के बाद आती है। दूसरी, वल लैली वमा वसक, और रात की और जिनको वो समेटे हुए हैं। वसक का लफ्ज़ इधर इस्तेमाल हुआ कि रात की भी कसम वसक की, लफ्ज़ी माना वसक का होता है जमा करना, कोई चीज़ जमा करना। अब यहाँ रात के जमा करने से मुराद क्या है, नंबर एक पूरी कायनात, जब रात आती है तो पूरी कायनात को समेट लेती है ना, फिर हैवानात नबातात परिंदे पौधे पहाड़ दरिया सब इसमें आ जाते हैं। इसी तरह देखिए कि जो चीज़ें दिन की रोशनी में आमतौर पर दिखती हैं रात के वक़्त वो सब छुटती हैं। इसी तरह परिंदे दिन में बाहर आ जाते हैं, रात को अपने अपने ठिकानों में जाके सो जाते हैं। इंसान को देखिए, सारा दिन जहाँ फिरे, रात को घर में जाना होता है, तो बमा बसक में हर चीज़ आ जाती है। तीसरी, वल कमरी इज़्ज़त तसक, और चांद की जब के वो माहे कामिल बन जाए। असल में ये चौथी कसम है, पहली थी वल लई रात की भी कसम, तीसरी थी वमा वसक और जो कुछ रात में, और तीसरी है वल कमरी चांद की, कब इज़्ज़त तसक, जब के वो कामिल हो जाए। तसक का लफ्ज़ ना ये वसक से है, इसका रूट गलत ना कीजिएगा। वाव सीन काफ ता फिर यहाँ मानस की है। वाव सीन काफ से वसक का लफ्जी माना होता है जमा कर लेना। कमर के साथ इत्तेसाक का मानी क्या है, कि वो अपनी रोशनी को जमा करे, और ये कब होता है, चौदहवीं रात में, जब के चांद बिल्कुल पूरा होता है। चांद की मुख्तलिफ सूरतों की तरफ इशारा है कि हिलाल से बदर बनने के बीच में जितने मरहले आते हैं और बिल आखिर वो कमर बन जाता है, इन चार कस्मों के बाद जो कसम का जवाब आ रहा है वो क्या, लतरगबुन, तुम्हें बतदरीज जीना बजीना चढ़ना होगा, तुम एक हालत में नहीं रहोगे, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे से मौत, मौत से बरज़ख, बरज़ख से दोबारा ज़िंदगी, दोबारा ज़िंदगी से मैदान मख्शर, मैदान मख्शर से फिर हिसाब किताब, फिर जजा सजा की मंजिलों से तुमको गुजरना पड़ेगा। मुझे याद कब याद आती है, जब हम घर से निकल कर एयरपोर्ट से अपनी मंजिल तक पहुंचने के दौरान कई मरलों से गुजरते हैं। लतरगबुन तबकन अन तबक, आप सोचें हमारे जन्नत के बीच में भी कितने मरहले हैं। दिल तो चाहता है जन्नत मिले, अल्लाह ताला से मुलाकात की भी ख्वाहिश हो, लेकिन बीच में भी तो मौत का मरहला पड़ा हुआ। अभी तो पुल कब्र में रहना है, अभी तो सूर की आवाज़ सुन के फटनी है कब्रें, सोच के खौफ आते हैं ना, ठंडे होते हैं हमारे। फिर मैदान मख्शर की गर्मियाँ, फिर पुल सरात, फिर कहीं जन्नत, थक जाएंगे। कभी कोई पाकिस्तान में बैठा हुआ शो अमेरिका जाने का सोचते हैं तो कहते हैं हाय 17-18 घंटे की फ़्लाइट है, अच्छा इतने स्टॉप है, अच्छा जितने स्टॉप होंगे ना उतनी मुश्किल लगेगी फ़्लाइट, ये भी एक अजीब बात है। आप नॉन स्टॉप फ़्लाइट लें, न्यूयॉर्क की ले लें, ह्यूस्टन की ले लें, 14 घंटे की हो जाती है ऑलमोस्ट। इतना ईजी बंदा फील करता है, आप वैसे ही थके होते हैं, जहाज में गए, कुछ खाया पिया, वो सर्व करते हैं, सो जाए, नींद भर के 8-9 घंटे सोए, फिर उसके बाद घड़ी पर नज़र है, 1 घंटा पीछे, एक कम, और ये यकीन होता है जहाज से निकलेंगे तो अपने मुल्क में होंगे। इसके बरक्स आप के छोटे छोटे स्टॉप लेते हैं, किसी को लंबी फ्लाइट से डर लगे, हर 2 घंटे पर स्टॉप ले, बाज़ दफ़ा लोग 24 छोटे 36 घंटे में पहुँचते हैं, थक के चूर हुए होते हैं। क्यों डायरेक्ट फ्लाइटें महंगी होती हैं, ब्रोकन फ्लाइट्स जो कई स्टॉप ओवर्स हैं वो सस्ती होती हैं, इसलिए कि उसमें थकन ज़्यादा है। तो लतरगबुन तबकन अन तबक, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे अभी बड़े मरहले पड़े। आपको पता है सबसे कम मरहले किसके होते हैं जन्नत के और उसके बीच में, शहीद के। शहीद मरते ही जन्नत में पहुंच जाता है, पीछे हदीसें सुन चुके, आज मरे कब्र में जो हिसाब किताब है वो छोड़ दें, मुराबित नहीं होता। पीछे याद है सूरह आले इमरान की आखिरी आयत, कि शहीद से कब्र का मामला नहीं होता, डायरेक्ट उसकी रूह को अल्लाह ताला सब्ज़ परिंदे में डाल के जन्नत में छोड़ देते हैं। जितने लोग अल्लाह की नज़रों में शहीद हैं वो सब इस वक्त जन्नत में फिर रहे हैं, और रात होती है तो अर्श के नीचे कंदीलों में आके लटक जाते हैं, सो जाते हैं। फिर रोज़ जैसे ही होता है, फिर एक दिन उनका रब उनसे पूछता है कि कुछ मांगो, खुश हो, जी अल्लाह खुश क्यों ना हो, सब कुछ तो है, कुछ मांगो, नहीं कुछ नहीं अल्लाह सब कुछ है, कब मांगो, अच्छा अल्लाह फिर एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी दे और तेरे रास्ते में शहीद हो, क्योंकि जो लज्जत छुरी गर्दन पे चलते या तलवार से कटते हुए फील हुई थी आज भी उसको मिस करते हैं, इतनी लज्जत मिलती है उसको अल्लाह के रास्ते में। ये कब मिलती है, जब गर्दन कटती है, नहीं ये छोटी छोटी कुर्बानियों में कटती है। कल रात थोड़ा लेट हो गया, लेकिन हम काफ़ी लंबे सफ़र और इस तरह कर करा के आए, तो हम जो जुमला एक दूसरे से पूछ रहे थे वो कहते कि बताएं किसी को कोई थकन लग रही, कोई थकन नहीं थी। और अगर कोई आज ये सोच के छुट्टी कर ले या घर बैठ जाए या देर से आए ना कि हम कल थोड़ा सफ़र किया हमने अल्लाह के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि वह झूठ बोलेगा, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में थकन नहीं होती, फ्रेशनेस मिलती है, इतनी आसूदगी, इतनी आसानी, कोई थकन नहीं, कोई तकलीफ नहीं, इंजॉयमेंट बल्कि और फन। आप समंदर से होके आए, आप आते हैं आपका जिस्म थका होता है, आप वॉक करके आए, घूम फिर के आए, शादी से आए आप टूट रहे होते हैं, आप अल्लाह के काम करके आए आप उतने मुतमईन होते हैं, उतने मसरूर होते हैं। इसी तरह एक इंसान जब अल्लाह के रास्तों में ज़िंदगी बसर करता है ना, तो उसका हर लम्हा शहादत का लम्हा है। आप कहते हैं हाय फिर हम गर्दन नहीं कटवा लें, नहीं, वक्त कटाएं, ख्वाहिशें कटवाएं, आर्ज़ें कटाएं, माल कटवाएं, फिर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कितनी रहमत एक इंसान पे करता है। लतरकबुन्ना तबकन अन तबक, तुम एक तबक के बाद दूसरे तबक पे हो। और अगर इसको ज़रा दुनिया के मराहल पे भी देख लें तरकबुन्ना को, तो वो सारे मरहले के पहले माँ की कोख में गया, जो भी नुतफा था वहाँ बना, फिर उसके बाद आप देखिए रहम में आया, रहम मादर से दुनिया में आए, दुनिया में बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापे, फिर कभी सेहत से बीमारी, कुव्वत से ज़ोब, खुशहाली से बदहाली, सारी ज़िंदगी दुनिया में इंसान मुख्तलिफ मरहलों से रहता है, और कल क़यामत के दिन अपने आप को वहाँ पाएगा, और होगा क्या कि अपने रब के सामने होगा। कोई रोक सकता है घड़ी को इधर बीच में? कि हमारी उम्र की घड़ी ख़त्म हो जाए? नहीं ख़त्म हो सकती। इसलिए फ़मा लहुम, फिर क्या हो गया इनको? ला युमिनून, फिर भी नहीं मान लाते, फिर भी नहीं मानते। इतनी तब्दीलियों को देखते हो अपने जिस्म में, हर दिन तब्दीलियां देख रहे हो, अपने इर्द गिर्द फैली हुई कायनात में तब्दीलियां देखते हो, बहार के बाद खिजां, खिजां के बाद बहार, गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी देखते हो, लेकिन मानते क्यों नहीं हो? क्यों कहते हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं अपने आप को ऐसे ही हमेशा पाऊंगा, मैं तो हमेशा ही जवान रहूंगा? नहीं, फमा लहुम ला युमिनून। कैसे पता चलता है कि ईमान नहीं लाए? उसका इजहार अगली आयत में, ईमान ना होने की दलील क्या है कि वह इज़ा कुरी अलैहिमुल कुरआन ला यस्जुदून, जब इन पर कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। वो कुरान जिसकी तासीर से पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों पर लर्जा तारी हो जाए, वो इनके सामने पड़ा जाए, उसकी तिलावत की जाए, ये कोई असर कबूल नहीं करते, अंदर से टूटते ही नहीं, आजजी आती नहीं, क्योंकि यस जो दून के दो मानी है, अंदर की आजजी, अंदर से टूटना किसी चीज़ का, दिल झुकना, अल्लाह का हुक्म सुन के अजीनत ले रब्बी हा व हुक्कत वाली कैफियत पे आ जाना, समय ना के बाद अताना आ जाना, ये तो एक मामला है। लेकिन ला यस्जुदून का दूसरा मानी कि फिज़िकली भी सजदा नहीं करते, अल्लाह का हुक्म सुन के बस झूमते हैं, पढ़ते रहते हैं, सजदा नहीं करते। आयत सजदा अभी इंशाल्लाह करेंगे सूरत पूरी करने के बाद। लेकिन यहाँ जो असल माना है ना ला यस्जुदून का, वो इताअत ना करने का, आजिज़ नहीं होते। कुरान पढ़ पढ़ के इनके सामने रखा जाता है, इनको नहीं समझ आती, समझ आती है अमल नहीं करते। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बल्कि ये कुफार इसे उल्टा झुटलाते फिरते। कहाँ लिखा है, किसने कहा है, दिखाओ मुझे, अल्लाह गफूर रहीम है, इस तरह झुटलाते हैं। मुतासर होना या सजदे में सर झुकाना तो एक तरफ, ये जालिम इसको उल्टा झुटलाते हैं। कोई इसको जादू कहता है, कोई इसको खुद साख्ता कलाम कहता है, कोई कहता है जिन से सीख लिया, कोई कहता है खुद ही पढ़ पढ़ा के आगे। ला यस्जुदून बलिल्लज़ीन कफरू युकज़्ज़िबून, कोई बात नहीं, वल्लाहु आलमु बिमा युऊन, और अल्लाह खूब जानता है जो इनके दिलों में भरा हुआ है। विया का लफ्ज़ पीछे पढ़ा था ना हमने, वही है ये भी, वाव ऐन या से, यजमाउन के मानों में, यानी कुफर और अदावत इनके सीनों में भरी हुई है। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि जो कुछ अपने दिलों में इन्होंने छुपा रखा है, अल्लाह इसको खूब अच्छी तरह जानता है। क्या होगा अंजाम? फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, बस खुशखबरी सुना दें इनको दर्दनाक अज़ाब की। खुशखबरी और दर्दनाक अज़ाब की, जी, इसलिए कि इन्होंने भी दीन को मजाक बनाया हुआ था ना, इनको लगता था कि ये दीन बस ऐसे ही इनके सामने आ गया। आज इनको बताओ कि अल्लाह के दीन को झुटलाने का अंजाम क्या दिखा। وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, ये है एक बात। लेकिन एक दूसरी बात, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, मगर वो लोग जो ईमान लाकर नेक अमल करते रहे, لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ, इनके लिए ऐसा अजर है जो कभी मुनक़ति नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा इनका अजर। ممنون من سے۔ اب آپ آخری صورتوں میں یہ جملہ بھی بہت دیکھیں گی، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورت 3 کے آخر میں آتا ہے، سورت عصر میں آتا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ کہیں لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، کہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی بات آتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کا، وہ کیسے؟ اس لیے کہ جو نیکی انہوں نے کی ان کو دیکھ کر دوسروں نے کی، اور ہوتے ہوتے یہ نیکی ان کی ملٹی پلائی ہوتی گئی۔ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، امام بخاری کی نیکیاں کتنی ملٹی پلائی ہو چکی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیکیاں ختم ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ جیسے آئینے کے سامنے ایک آپ آئینہ رکھ دینا تو ہر شیشے کا شیشہ بنتے ہوئے آپ کو ساری دیوار پہ شیشے شیشے دکھتے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ دعا کریں اللہ ہم سے وہ نیکیاں کرائیں کہ نیکیاں اس طرح ملٹی پلائی ہوتی جائیں کہ غیر ممنون، کٹنے والی نیکیاں نہ ہوں، ٹوٹنے والی نیکیاں نہ ہوں، بیچ میں چھوٹنے والی نیکیاں نہ ہوں، آدھی لی نیکی آدھی نہ لی ایسی نیکیاں نہ ہوں۔ ادھوری چیز پوری کب ہوتی ہے؟ پوری چیز ہی بڑھتی ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ وہ اخلاص دے، وہ کوششیں کرا کہ جو ہماری نیکیوں کو پھر آگے بڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی دین کے نام پہ بھی کوئی جگہ دیکھتی ہوں نا میں، تو مجھے اگر اس میں کوئی چیز خراب دکھے، دروازہ خراب ہے یا لاک ٹوٹ گیا اتر گیا، تو ایک دم میرے ذہن میں آتا ہے جس نے اس چیز کے پیسے لگائے دیے ہوں گے، ختم اس کا اجر۔ چھت گر گئی، ٹوٹ گئی، کرسی ٹوٹ گئی، پھینک دو بھائی، ٹوٹ گئی، ختم۔ اخلاص جو ہوتا ہے نا وہ چیزوں کو بہت پھیلاتا ہے۔ تو دعا کرے کہ کوئی ایسا پیسہ، کوئی ایسی کوشش ایفرٹ ہمارے اس پروجیکٹ میں نہ لگے کہ جو اس کو جلدی سے گرا کے رکھ دے، جلدی سے اس کو ختم کرے۔ اخلاص کے ساتھ چیزیں چلتی ہیں، پیسوں سے نہیں چلتی، مینٹیننس سے نہیں چلتی۔ اخلاص رکھیں گے نسلوں تک نیکی رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا کہ بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، اپنا گھر چھوڑ کے اللہ کا گھر آباد کیا، آج نسلوں میں اس کا اثر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے نیکیوں کی کوششیں کی، ختم ہو گئی۔ وہی بچتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے۔ فَمَّمَا يَنْفَوْنَا سَبَجَمْ خُسْ، ان آخری آیتوں کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے سورۃ السماء شفقت کی تلاوت نماز میں کی، پھر اس آیت پر سجدہ کیا، یعنی دوران نماز ہی انہوں نے سجدہ کیا۔ میں نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے، کیونکہ عموماً جب امام ایسا سجدہ کرتے ہیں تو مقتدی پریشان ہوتے ہیں، اگر ان کو پہلے سے نہ بتایا گیا ہو یا پتہ نہ ہو تو اس وقت بعض لوگ غلطی کھا کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ آپ نے کیا، تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں اس آیت پر سجدہ کیا، اس لیے میں ہمیشہ اس آیت پر سجدہ کروں گا یہاں تک کہ محشر میں میری آپ سے ملاقات ہو۔ تو یہ آیت سجدے کی آیت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ السماء انشقت اور اقرأ باسم ربک، جو پہلی وحی تھی اس میں بھی ایک سجدہ، ان دونوں پر آپ نے سجدہ کیا۔ تو سجدے کے بارے میں احکامات وہی ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے، سن چکے، اور یہاں سیکنڈ لاسٹ سجدہ ہے قرآن کا۔ قرآن پاک میں جتنے سجدے ہیں یہ اور اس کے بعد آخری سجدہ پھر ہم سورت اقرأ میں پڑھیں گے۔ تو یہ تھی سورت، ہلکی پھلکی لیکن دل کو بوجھل کرنے والی، کہ ہم سب کو اپنے حساب کی فکر ہے اور کیا حقیقت میں ہم اپنے اس حساب کے لیے تیار ہیں۔ تھوڑا سا اپنا محاسبہ ضرور کرنا چاہیے نائتوں کو پڑھنے اور سننے کے بعد کہ کیا واقعی میں نے اپنے آپ کو کھلی چھٹی تو نہیں دی، کیا مجھے یقین ہے کہ قیامت کے دن زمین اپنا سب کچھ کھول کے باہر رکھ دے گی، کیا مجھے اس کا یقین ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گی، کیا جس طرح زمین اور آسمان اللہ کا حکم سن کے ماننے کو تیار ہے کیا میں بھی تیار رہتی ہوں، کیا میری ساری محنت اور دوڑ دھوپ کا مقصد صرف دنیا ہی تو نہیں، میں نیکی کے کاموں کے لیے کتنی محنت کرتی ہوں، کتنی دوڑ دھوپ کرتی ہوں، کیا مجھے کوئی نیکی کرنے کے بعد اس کے پورے اجر کی امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کیا میں گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض تو نہیں کر دیتی، کیا میں اللہم حاسبنی حساب یسیرہ کی دعا پڑھتی ہوں، دعا مانگتی ہوں، کیا میری زندگی میں غفلت تو نہیں ہے، کیا میں خود کو अपने हाथों में देना पसंद तो नहीं करती? क्या मैंने अपने रब से मुलाकात की दुआ मांगनी शुरू की? और अगर ये चार कस्मों पे भी गौर करें ना, फलाक्सिमु बिश्शफ़क़ वल्लैल वमा वसक़ वल्क़मर, तो आप देखिए इन चारों में भी आमाल का उतार चढ़ाव है। ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली आती हैं फिर बढ़ती हैं। असल में पिछली बात को वाजे करने के लिए अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारी ज़िंदगियों में भी ये सब कुछ हो रहा है जो इस कायनात में हो रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की, अपने मुहासबे की और अपनी इस्लाह की तौफीक अता फरमाए, आखरत का ज़्यादा से ज़्यादा गम लग जाए और इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को उस अगली दुनिया का राही समझें। यहाँ तक सूरत पूरी हुई, हम एक दफ़ा तिलावत सुनेंगे और इस पे इंशाल्लाह ताला गौर व फिक्र भी करेंगे बाद में कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तिलावत सुनते वक्त जितनी बातें तफसीर में आपके अपने अमल से मुतल्लिक होती हैं उसके ऊपर गौर किया करें।
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.